دوسرا اس کا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے رسولوں کے بارے میں فرمایا کہ لقد ارسلنا رسولا من قبلک، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے، وجعلنا لهم ازواجا وذریہ، اور ان سب کے لیے ہم نے بیویاں بھی بنائیں، ان کو بیویاں بھی دیں اور ان کو اولاد بھی دیں۔ تو انبیاء کرام کو بھی اولاد بھی ہوئی، ان کے بھی شادیاں ہوئی، ان کی بھی بیویاں تھیں، جن کو اولاد نہیں ہوئی تو انہوں نے اولاد کی دعا کی، اولاد کی تمنا کی، وہ دعا بھی اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کیسے اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں کہ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ میاں ایک اپنے پاس سے ایک نیک لڑکا عطا فرما، کیسی نبی کی دعا ہوگی کہ دعا کرتے ہیں کہ اولاد چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بوڑھی عمر میں جب فرشتے خوشخبری دینے آئے کہ آپ کے گھر میں لڑکا ہوگا، تو حضرت ابراہیم پریشان ہوئے کہ اس بڑھاپے میں کیسے لڑکا ہوگا، مگر اللہ نے اولاد دی۔ دوستو اور بزرگو، خاندان اس کا وجود نکاح کے ذریعے ہوتا ہے، نکاح سے رشتے بنتے ہیں اور نکاح سے خاندان کا وجود آتا ہے، اسی لیے نکاح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری سنت ہے اور یہ انبیاء کی سنت ہے۔ اور نکاح کا رشتہ ایسا مقدس رشتہ ہے کہ یہ رشتہ دنیا سے لے کر جنت میں تک ساتھ چلتا ہے، دنیا میں مرنے تک جو عورت کسی ایک مرد کے نکاح میں رہی اور پھر اس نے مرد اگر پہلے انتقال کر گیا اور اس نے دوسری شادی نہیں کی تو جنت میں وہ اس کی بیوی ہوگی، تو جنت میں بھی یہ رشتہ باقی رہتا ہے، اتنا عظیم رشتہ ہے۔ اس میں ایک بات اور بھی یاد آئی کہ اگر ایک خاتون کے شوہر انتقال کر جائے، انہوں نے دوسری شادی کی ہو، دوسرا بھی انتقال کر جائے، تیسری کی ہو، تیسرا بھی انتقال کر جائے، خاتون کا کیا قصور ہے؟ اور قیامت میں جنت میں وہ کس کی بیوی ہوگی؟ تین شوہر تھے، تینوں انتقال کر گئے، کس کی بیوی ہوگی؟ عجیب بات رسول اللہ نے فرمائی۔ جب صحابی نے پوچھا کہ وہ کس کی بیوی ہوگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس عورت کو اختیار دے گا کہ اس میں سے جو سب سے اچھا اخلاق والا تھا اس کو سلیکٹ کر لے، تین میں بھی جو اچھے اخلاق والا تھا، وہ کسی غلط کو تھوڑا ہی سلیکٹ کرے گی، جو سخت تھا گزار لی۔ جیسے میں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ خاتون نے، بڑی عمر کی خاتون نے فون کر کے کہا کہ مولانا کیا جنت میں بھی یہی ہمارا شوہر ہوگا؟ تو میں نے کہا ہاں، جب پہلے انتقال کس کا ہوگا، پھر اگر آپ اس کے بعد دوسری شادی نہ کریں تو جنت میں وہی آپ کا شوہر ہوگا۔ نہیں، میں نہیں چاہتی یہ جنت میں میرے ساتھ ہو۔ کیوں؟ اتنا آپ کو ستایا ہے، اتنا تکلیف دی ہے اس نے آپ کو، اگر تکلیف دی ہے تو کہاں یہ اللہ میاں، اگر آپ معاف نہ کریں تو وہ جنت میں تھوڑے آئے گا۔ مگر خاتون، اس کا دل اور اس کا مزاج، آپ جواب سنیے، میں نہیں چاہتی کہ وہ جہنم میں جائے، میں نہیں چاہتی، میں اس کو معاف کرتی ہوں، مگر اس کو نہیں چاہتی کہ وہ جنت میں میرے ساتھ رہے، میں اس کو معاف تو کرتی ہوں مگر نہیں چاہتی کہ یہی بوڑھا میرے ساتھ رہے جنت میں۔ سوچیں آپ کتنی اچھی نرم دل کی ہوتی ہیں خواتین، کیا ان کے جذبات ہوتے ہیں، کیا ان کا مزاج ہوتا ہے، وہ یہ بھی نہیں چاہتی کہ اللہ عذاب دے، نہیں میں معاف کرتی ہوں۔ تو پھر میں نے کہا کہ اللہ میاں جنت میں جو خرابیاں ہیں انسان کی وہ سب نکال دیتا ہے، دل کی خرابیاں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ رشتہ وہاں تک ہے، ये रिश्ते को बाकी रखना दोस्तों और बुजुर्गों, ये बहुत बड़ा कमाल है। ये कोई आसान काम नहीं है दोनों के लिए भी, लेकिन बाकी उमूमन बाकी रखने की डोर वो मर्द के हाथ में है, जिसको मैंने गुज़िश्ता जुमा में अर्ज किया था, अल्लाह ने मर्द के हाथ में दिया है। अब इस डोर को जो मर्द के हाथ में है औरत के हाथ में नहीं दिया, उसकी वजह यही है कि औरत उमूमन जज्बाती होती है, जल्द फैसला कर लेती है, गुस्से में आ गई, फिर थोड़ी देर में मान भी जाने वाला उसका मिजाज होता है। मैंने गुज़िश्ता आपको जिक्र किया था कि एक लड़की ने फोन किया कि मुझे तलाक चाहिए, मैं आना चाहती हूं। अच्छी बात है, आइए, मगर आप तलाक सोच के मत आइए, आप आइए, मैं आपसे बात करता हूं। वो सिर्फ एक दिन में उसका दिमाग बदल गया, जब आई और बात की तो अब वो तलाक नहीं, वो दूसरे बातें करती है कि नहीं मुझे इन्होंने ऐसा किया और वैसा किया, अगर ये अच्छे रहते हैं तो मैं रहने तैयार हूं। और अगर उसके हाथ में तलाक का इख्तियार होता तो वो तलाक दे चुकी होती, तलाक दे चुकी होती। तो इसीलिए तो अल्लाह ने हमारे हाथों में दिया है दोस्तों, हमारे हाथों में दिया। अब हम इसको इतना गलत इस्तेमाल कर रहे हैं कि इसके नतीजे में आप यकीन माने हराम में मुस्लिम सोसाइटी मुलव्वस हो रही है, हराम में। तलाकों पर तलाकें होने के बाद अब वो तलाक को मानते नहीं, मर्द कहता है कि नहीं वो असल मेरा इरादा नहीं था। इरादे से कुछ नहीं होता फराह, अब आपके इरादे की कोई जरूरत नहीं है, अल्फाज अपना असर रखते हैं। तो उससे पहले एक बात और अर्ज करूं, आजकल एक और मसला पैदा हो रहा है जो कम्युनिकेशन की वजह से और ये जो साइंस की तरक्की ने कि निकाह कर लिया फोन पर कर लिया, स्काइप पर निकाह कर लिया, मसाइल ना उलमा से पूछते हैं, किसी मुल्क में कहीं कोई बैठा हुआ है, वहां वो बैठा है, यहां ये बैठी है, वहां उसके साथ कोई है, यहां इसके साथ कोई है, निकाह हो गया। उलमा से पूछा कि क्या ये निकाह वैलिड है, क्या ये निकाह होगा या नहीं होगा, कोई अपनी तरफ से इश्तेहाद है, अपनी तरफ से सारी चीजें हैं कि हो गया। अब बाद में जब आंखें खुलती हैं और मालूमात होते हैं तो अब परेशान होते हैं कि ये निकाह हुआ था या नहीं हुआ था। स्काइप पे किया, वो भी सामने थे, हम भी सामने थे, वो भी देख रहे थे, हम भी देख रहे थे। भाई उलमा से मसला तो पूछ लो कि क्या इस तरह के निकाह से निकाह होगा या नहीं होगा, किसी से फतवा तो ले लो जो माहिर हो इस लाइन के। ये नई चीजें जो आई हैं, क्या अदालत इसको कबूल करती है, अदालत में ये गवाही कबूल होगी, स्काइप पर अगर कोई गवाही दे अदालत कहेगी कि यहां आना पड़ेगा, गवाह को महफिल कजा में आना जरूरी है, इसी तरह निकाह में महफिल निकाह में दो गवाह होना जरूरी है, और फिर लड़की की तरफ से या वकील हो, उसकी तमाम बारीकियां हैं और वो तमाम बारीकियां हर एक जानते नहीं, या वकील लड़का लड़की अपना वकील बनाए या लड़का अपना वकील बनाए, फिर उसके बाद दो गवाहों की मौजूदगी में निकाह करें, वकालत नहीं होती है और खुद कर लेते हैं तो मसला बन जाता है। एक तो ये मसला हो रहा है, दूसरा उसके बाद का जो मसला हो रहा है कि जो इस्लाम ने एक बेहतरीन सही तरीका हमको सिखाया, उस तरीके को हमने पहले तो इस्लाम ने यह तरीका सिखाया कि अपने घर को बचाओ, तुम्हारी कोताहियों से गलतियों से तुम्हारी जल्दबाजियों से घर मुतासिर होगा, खानदान मुतासिर होगा, बच्चे मुतासिर होंगे, और इस मुल्क में जो मसाइल दोस्तों खड़े हो रहे हैं उसके बाद जो बच्चों के मसाइल खड़े हो रहे हैं उसको गौर नहीं कर रहे हैं। लड़कियां भी बेफिक्री के साथ अंजाम सोचे बगैर वो तलाक का मुतालबा करते हैं, लड़के वो तलाक का मुतालबा, और वो आराम से तलाक दे देते हैं, जिसके नतीजे में कई मसाइल खड़े हो रहे हैं। और इस्लाम के जो अहकामात हैं और इस्लाम के जो तकाजे हैं और इस्लाम की जो रहबरी रहनुमाई है उसको
हम पूरा पीछे डाल दिए हैं। हम समझते हैं कि ये अमेरिका है, हम जो चाहे यहां कर सकते हैं। यहां पे कैसे कुरान पे अमल होगा, यहां पे कैसे दीन पे अमल होगा, यहां पे इस्लाम पे कैसे अमल होगा, यहां पे हमें करने दीजिए जो हम कर सकते हैं, कानूनी तौर पर जो हम कर सकते हैं, जो हकूक हम ले सकते हैं वो बराबर लेंगे। और कमाल तो ये है कि बाद मरतबा लड़कियां अदालत में महर का मुतालबा भी करती हैं। जज कहता है ये महर क्या है, कि मेरा महर 100,000 था, मुझे महर दिलाया जाए। तो वो जज ने कहा यह महर क्या है, नहीं ये इस्लामिकली हमको मिलना चाहिए, इसने शादी के वक्त लिखाया था महर 100,000, ये हमें मिलना चाहिए। तो क्या जज इस्लामी फैसला करेगा कि हाँ इस्लामी तौर पर तो महर देना जरूरी है, यहां तो इनको इस्लाम चाहिए, महर में इस्लाम चाहिए, और फिर मेंटेनेंस भी चाहिए हमको, यहां इस्लाम नहीं चाहिए, नहीं यहां इस्लाम नहीं चाहिए, मैं जॉब नहीं करती हूं मुझे मेंटेनेंस चाहिए, शौहर जॉब करता है या मैं कम जॉब करती हूं तो मुझे मेंटेनेंस चाहिए, स्पाउस सपोर्ट चाहिए, माहाना इतना चाहिए। भाई ये इस्लाम के खिलाफ है ना मौली साहब, यहां इस्लाम रहने दो, वहां इस्लाम चाहिए या इस्लाम नहीं चाहिए, आखिर आपको चाहिए क्या? हमको सिर्फ पैसा चाहिए, ना हमको इस्लाम चाहिए ना हमको कुछ चाहिए, हमको सिर्फ पैसा चाहिए, जैसे मिलता हो जहां से मिलता हो जो भी हो ये हमको मिलना चाहिए। दोस्तों और बुजुर्गों, ये जो मसाइल खड़े हो रहे हैं इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक छोटी सी बात है। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि खैरुकुम खैरुकुम लि अहलिही व अना खैरुकुम लि अहली औ कमा कल अलैहि सलाम, कि तुम में से बेहतर आदमी वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा हो, घर वालों के साथ जो अच्छा है वो अच्छा आदमी है। हम में से हर एक का मसला यह है कि हम बाहर वालों के साथ बहुत अच्छे रहना चाहते हैं, बाहर हमारी कोई खराबी मालूम ना हो, बाहर हमारी कोई बुराई मालूम ना हो, बाहर हमारा अच्छा नाम हो, बाहर हम बड़े नेक बने हुए हों, दाढ़ी भी है, जुब्बा भी है, टोपी भी है, नमाजों में भी हैं, मस्जिदों की अगली सफों में भी हैं, देखो तो बहुत शरीफ नजर आते हैं, ये तमाम चीजों से बहुत धोखा लोग खा जाते हैं कि भाई बड़ा नमाजी आदमी है, मस्जिद आता है, नमाज पढ़ता है, पाबंद है, लेकिन इस नमाज ने उसको कितना सुधारा कितना नहीं सुधारा। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक आदमी के बारे में गवाही पेश हुई कि यह आदमी अच्छा है या बुरा है, यह आदमी नेक है या क्या है, कैसा है। तो एक आदमी ने खड़े होकर गवाही दी कि मैं जानता हूं इनको, ये बहुत अच्छे आदमी है, ये बहुत अच्छे आदमी है। अच्छा आप जानते हैं? जी। कैसे जानते हैं आप? क्या आपने इनके साथ कुछ सफर किया? कहा नहीं सफर तो नहीं किया। अच्छा क्या आपने इनके साथ कोई मामला किया है, कोई लेन देन का मामला किया? तो उसने कहा नहीं लेन देन का मामला भी नहीं किया। क्या आप इनके पड़ोस में रहते हो? कहा नहीं पड़ोस में भी नहीं रहता। तो फिर क्या इनको मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए देखे हो? हां मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए देखा हूं। कहा इससे कोई शराफत साबित नहीं होती, इससे कोई शराफत आपकी मेरी साबित नहीं होती। मामला कीजिए किसी के साथ, देखिए जरा सा, ऐसा खुल के बाहर आते हैं हजरत अंदर के, ऐसा निकल के सामने आ जाते हैं कि वाह, सोचते हुए हैरानी होती है कि ये वही आदमी है जिसको हम समझते बड़ा दीनदार है, जिसको हम समझते इतना नेक नमाजी परहेजगार है, अरे ये तो टोपी वाला दाढ़ी वाला जुब्बे वाला पगड़ी बांधा हुआ सब कुछ रखता है, हम तो समझे इसके लिबास को हुलिये को देखकर, लेकिन अंदर से इतनी शरारत मिजाजों में। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने एक हमारे हाथों में एक कसौटी दी कि यहां परखा जाता है आदमी, मामला करके देखिए, मामले में परखे जाते हैं कि कितने शरीफ हैं, कितने पाबंद हैं, कितने सही हैं, और इसी तरह सफर में परखे जाते हैं। अमेरिका में पड़ोस में नहीं परखे जाते हैं, यहां पड़ोस होता ही नहीं कोई, यहां कोई किसी का पड़ोस नहीं है, यहां पे पड़ोसी को कोई नहीं पहचानता। हमारे मुल्कों में पड़ोस रिश्तेदार की तरह रहते थे और रिश्तेदार की तरह रहते हैं, आपसी ताल्लुकात, भरोसे, एक दूसरे के पास आना जाना, दुख दर्द, ये सब पड़ोस हमारे मुल्कों में होता था। अब वहां भी अपार्टमेंट बिल्डिंगें बनने लगी, वहां भी हम लोग अकेले अकेले रहना पसंद करने लगे। ये एक चीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि तुम अच्छे रहना चाहते हो तो अच्छाई का सर्टिफिकेट तुमको अंदर से मिलना चाहिए, अंदर से। घर वाले कहें, घर वालों में सब हैं दोस्तों, बीवी ही नहीं, मां बाप कहना चाहिए, भाई बहने कहना चाहिए, आपके चचा मामू खाला फूफी कहना चाहिए, बीवी कहना चाहिए। हम घर में बाज मर्तबा इतने अजीब हालतों में रहते, बाहर नहीं बताना, कोई मेरे दोस्तों को नहीं बताना कि मैं क्या हूं, नाराज हो जाएंगे। अगर किसी दोस्त से जिक्र करो कि ये जो तुम्हारा दोस्त है ये ऐसा है, घर में इसकी ये हालत रहती है, ऐसा काहिल और ऐसा गुस्से वाला और ऐसा घर में इसका सलूक है, और घर में मालूम आ जाए और उनको दोस्त कोई उनको ठीक करने की कोशिश करे, समझाए, तो अब देखिए घर में हंगामा है, साहब मेरी बेइज्जती हो गई, बाहर दोस्तों में मेरी बेइज्जती हो गई, और घर में क्या दोस्तों में इज्जत कमाना है, बाहर दुनिया को धोखा देना है और अंदर घर में कैसा रहना है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यहां अच्छे रहो जहां तुमको रहना है। दोस्तों और बुजुर्गों, मैंने गुज़िश्ता तलाक के मसले को बहुत खोलकर बयान किया कि ये मसले में पहले तो वहां तक नौबत आना नहीं चाहिए, इसकी कोशिश आप हम पूरा खानदान पूरी कम्युनिटी मिलकर करनी चाहिए। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला जो हम फेस कर रहे हैं, हमारे बच्चे और बच्चियों की शादियां नहीं हो रही हैं, पहले तो नहीं हो रही है, मुनासिब लड़के लड़कियां नहीं मिल रहे हैं, परेशान हैं लोग, बाहर से लाते हुए डर रहे हैं, अपने मुल्कों से लाने के लिए डर रहे हैं, क्यों? कि वहां से आते ही थोड़े दिन में पैर बाहर निकालते हैं, पर फूट जाते हैं कि जरा सा मैं जम गया उतना ही मुझे काफी है, थोड़े दिन ठहरो फिर मैं बताता हूं। ऐसे पचासों वाकयात की वजह से अब यहां की लड़कियां और लड़के कहते हैं कि हमें इंडिया पाकिस्तान के लड़के नहीं चाहिए, लड़कियां नहीं चाहिए, और इतने धोखे हुए बच्चियों को बच्चों को कि वो सब परेशान हो गए, मां बाप परेशान है। हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज हो गया कि हमारी बच्चियों के निकाह हो कैसे, दुनिया इतनी सब कुछ हो गई कि इसके पीछे दीवाने बन गए, अपने अकदार, अपना मजहब, अपने अखलाक, अपना कल्चर, अपना दीन, इसकी कोई उसका कोई लिहाज और ख्याल नहीं, सिर्फ पैसा और इसके पीछे दौड़ और भाग, ये सबसे बड़ा मसला हुआ है। आज से 15 साल पहले तक भी ये मसला बड़ा आसान था हमारे लोगों के लिए कि अपने मुल्कों से शादियां करके लाते थे, उसके नतीजे में मुसलमान भी यहां आ रहे थे, बच्चे आ रहे थे, काबिल बच्चे आ रहे थे, आबादी भी आपकी बढ़ रही थी, लेकिन जब से यह धोखाबाजी शुरू हुई बंद हो गया। फिर उसके बाद जब यहां जिन बच्चों को दीन पसंद हुआ और जिन बच्चियों ने नकाब पहनना शुरू किया और जिन बच्चों ने दाढ़ियां रखना शुरू की, ये भी मुसीबत में आ गए। मुसलमान कहते हैं कि नकाब वाली लड़की नहीं चाहिए, मुसलमान कहते हैं पर्दा वाली लड़की नहीं चाहिए, और लड़कियां कहती हैं दाढ़ी वाला लड़का नहीं चाहिए, दाढ़ी वाला नहीं चाहिए, क्यों? मुसलमान दिखता है क्या? दिखता है दाढ़ी में मुसलमान दिखता है, तो कैसा दिखना चाहिए? कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, ऐसा चाहिए। और फिर इनके भी जब हुए تو پھر ان کے بھی مسائل آئے کہ لوگوں نے کر تو لیا, اب اس کے بعد اب وہ لڑکی کے پیچھے ہیں کہ صاحب تم وہاں اس سے کیوں بات کر رہی تھی, تم فلاں جگہ ایسا کیوں پہن کے گئی. تو آپ نے شادی ہی ایسی لڑکی سے کی جو برقع نہیں پہنتی, پردہ نہیں کرتی, سب سے مل کے بات کرتی ہے, اب کیا پریشانی ہے آپ کو؟ آپ کو پہلے نہیں پتا تھا؟ تو پھر یہ ایک دوسرا مسئلہ یہاں پر ہے. پھر جب ہو گئی شادیاں تو دوستوں اور بزرگوں تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ نبھانے کے لیے صبر کر کے نبھانا اور برداشت, یہ ہمارے بچے اور بچیوں میں ختم ہوتا جا رہا ہے بڑی تیزی سے اور بڑی آسانی سے. طلاق چاہیے, میں نے کہا نا 6 دن میں بھی طلاق مانگنے والے مانگے ہیں, شادی کے بعد 6 دن میں ہی طلاق چاہیے. اتنا آپ نے تجربہ کر لیا, اتنا زبردست صبر کر لیا اور قربانی دے دی. یہ جو خرابی ہے اس میں ہم سب کی ذمہ داری ہے. اگر ہمارے جاننے والے, ہمارے خاندان اور ہمارے قریب کے لوگ اگر اس طرح کی چیزوں میں ہیں تو ہم سب کو اس میں مل کر اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ نہیں بھائی اس سے بڑے نقصانات ہوں گے, آئندہ بڑے نقصانات ہوں گے. نقصان تو ایک تو یہ ہو رہا ہے کہ مسلم لڑکیاں اور مسلم لڑکے وہ تو غیروں سے شادیاں کرنے کے لیے تیار ہیں اور کر رہی ہیں اور ایسی شادیاں ہوئے ہیں کہ نکاح کے وقت اسلام بھی قبول کر لیا, بعد میں کہا کہ مجھے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں کر لیا تھا کلمہ پڑھ لیا تھا مگر اب میں کوئی اسلام سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے. اور ایسی بھی ہوئی ہے کہ کئی سال کے بعد بھی اس نے لڑکی نے کہا کہ میں اپنے بچوں کو کرسچن بناؤں گی, میں مسجد میں لے جانے دوں گی, اس شرط پہ بچے ہونے دوں گی ورنہ نہیں. اب آنکھیں کھلی, یہ کیا ہوا؟ پہلے تو یہ راضی ہو گئی تھی, یہ ریئل کیس بتا رہا ہوں میں, یہ جو ہو رہے ہیں یہاں یہ وہی بتا رہا ہوں میں, صرف اندازے کی گولیاں نہیں پھینک رہا ہوں آپ کے سامنے, یہ ریئل. اور اچھے اچھے لوگوں کے گھروں میں جہاں ماں باپ کی بات بچے سننے کے لیے تیار نہیں. دوستوں اور بزرگوں, بہت ہم لوگوں کو بیدار رہنا اور بڑی فکر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے یہ جو کمیونٹی کے مسائل ہیں یہ زیادہ گمبھیر نہ ہوتے جائیں, زیادہ الجھے نہیں, اور اگر اختلافات خدا نخواستہ پیدا ہوں تو ان کے حل کے لیے بہتر سے بہتر جو طریقہ ہے کہ علماء کے پاس آئیں, شریعہ بورڈ میں آئیں, یا اپنے علاقے میں جو علماء ہیں, جو ائمہ ہیں, جن سے تعلق ہے, جو آپ کو صحیح مشورہ دے سکتے ہیں, ان سے مشورہ کریں. پھر آخری قدم اٹھانا ہے تو پھر اس کی نوبت اگر آتی ہے تو پھر اللہ نے وہ راستہ بھی کھلا رکھا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.